एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उसके वचन सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें सुरक्षित रखा है। तेरे सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हमें तेरे नज़दीक आने के लिए मदद कर। मेरे हरेक श्रोतागण के संग हो जब तेरे वचन को सुनते हैं, वे तेरे वचन को सुनकर बहुतायत से आशीषित होने सके। उन सबों के संग हो और मेरे संग हो पिता। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि मैं तेरा वचन को तेरे आत्मा के सामर्थ्य से तेरे लोगों को बतला सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है विश्वासघात और पकड़वाया जाना। यीशु मसीह अपने चेलों के संग गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए आया था। वो अपने चेलों को अपने साथ लेकर आया था, विशेषकर अपने 3 चेलों को अपने नजदीक रखा था कि वे उसके साथ प्रार्थना करें, परंतु वे लोग सो गए, वे उसका साथ नहीं दे सके। यीशु मसीह बहुत कठिन और दुखदायक समय से गुजर रहा था और यीशु मसीह अकेले पाप का बोझ उठा रहा था और उस समय उसके चेले भी उसका सहारा नहीं दे सके, किंतु परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर पिता अपने पुत्र मसीह के साथ उसके दुख में शामिल था और उसका सहायता करने के लिए उसका स्वर्गदूत उसके लिए भेजा था। स्वर्गदूतों ने उद्धारकर्ता के संताप को देखा। उन्होंने देखा कि उनका प्रभु शैतान की लाखों सेनाओं से घिरा हुआ है और वह रहस्यमयी दशा में थरथराते हुए अपने सिर को झुका लिया है। स्वर्ग में सन्नाटा सा छा गया है, कोई भी बिना के तार को नहीं छू रहा है। क्या मरणहार मनुष्य इस बात का अनुभव लगा सकते हैं कि स्वर्गदूतों का समूह चुपचाप शोक में डूबा इस दृश्य को देख रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर से प्रकाश की किरणें, प्रेम और महिमा सभी कुछ को अलग कर दिया है। वे अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप कितना भयानक होता है। बिना पाप वाले संसार के लोग और स्वर्गीय स्वर्गदूत बड़े ध्यान और गहरी रुचि के साथ इस संघर्ष के अंत होने की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शैतान और उसकी बुराइयों के ठेकेदार तथा धर्म से विमुख हुए लाखों लोग इस महान उद्धार के काम में आ गए संकट को बड़ी व्यग्रता से देख रहे थे। भली और बुरी शक्तियां इंतजार कर रही थी कि 3 बार मसीह द्वारा दोहराए गए प्रार्थना का क्या उत्तर आता है। स्वर्गदूत चाह रहे थे कि कष्ट उठा रहे ईश्वरीय पुरुष की सहायता करे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। परमेश्वर के पुत्र को बच निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस दुखदायी संकट के समय जबकि सब कुछ दांव पर लग चुका था, जबकि रहस्यमयी कटोरा पीने वाले के हाथ में कांपने लगा था, तब स्वर्ग खुल गया। घनघोर संकट की इस घड़ी में एक प्रकाश की किरण चमकी और वह शक्तिशाली स्वर्गदूत जो शैतान के स्थान पर परमेश्वर के समक्ष खड़े होने और रहने के लिए नियुक्त किया गया था, मसीह की सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत इसलिए नहीं आया था कि मसीह के हाथ से उस कटोरे को ले ले, बल्कि उसे पीने वाले की शक्ति देने के लिए तथा पिता की ओर से उसके प्यार का आश्वासन देने के लिए आया था। वह इसलिए आया कि मनुष्य रूप में इस ईश्वरीय व्यक्तित्व को सहारा दे। उसने खुले स्वर्ग की ओर मसीह का ध्यान खींचा। उसने उन तमाम आत्माओं के विषय में बताया जो उसके कष्ट उठाने से बचाई जाएंगी। उसने मसीह को बताया कि उसका पिता शैतान की शक्ति से बहुत अधिक महान शक्तिशाली है। उसकी मृत्यु का परिणाम शैतान के लिए अति पीड़ादायक साबित होगा और इस संसार का राज्य परम प्रधान के संतों को दे दिया जाएगा। स्वर्गदूत ने मसीह से कहा कि वह स्वयं अपनी आत्मा के कठिन परिश्रम के फल को देखेगा और संतुष्ट हो जाएगा। वह देखेगा कि असंख्य मनुष्य अनंतकाल के लिए बचा लिए गए हैं। मसीह का संताप समाप्त नहीं हुआ, परंतु उसकी निराशा और निरुत्साह उससे दूर हो गए थे। तूफान की तेजी में कोई कमी नहीं आई थी, परंतु जिस पर यह सब लक्षित था उसमें उसका सामना करने की ताकत आ गई थी। वह वहां से शांतिपूर्वक आया। उसके लाल सुर्ख हो गए चेहरे पर अब एक स्वर्गीय शांति दिखाई दे रही थी। उसने वह सब सह लिया जो मनुष्य कभी भी नहीं सह सकता था। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का स्वाद मसीह ने चख लिया था। उद्धारकर्ता को चारों ओर से घेरे हुए दिव्य ज्योति को देखकर चेले अचानक जाग उठे। उन्होंने देखा कि उनके गुरु के औंधे पड़े शरीर पर स्वर्गदूत झुका हुआ है। उन्होंने देखा कि मुक्तिदाता के सिर को उसने अपनी गोद में रख लिया है और स्वर्ग की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने उसकी आवाज को एक मधुर संगीत के समान सुना जो मसीह से आशा और धीरज भरे शब्द बोल रहा था। चेलों ने पर्वत पर उस रूपांतर वाले दृश्य को याद किया। उन्होंने याद किया कि मंदिर में किस प्रकार से महिमा ने यीशु को घेर लिया था और बादलों में से परमेश्वर की आवाज आई थी। वही महिमा फिर से यहाँ पर प्रकट की गई थी और अब अपने गुरु के लिए उनके मन में कोई डर नहीं रह गया था। अब वह परमेश्वर की देखभाल में था। महान शक्तिशाली स्वर्गदूत को उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया गया था। एक बार फिर थकावट के कारण चेलों पर गहरी नींद ने कब्जा कर लिया था। यीशु फिर उन्हें सोता हुआ पाया। बड़े दुख के साथ उन पर नजर डालते हुए उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यहां तक कि जब वह इन शब्दों को कह ही रहा था कि एक बड़ी भीड़ के कदमों की चाप को सुना जो उसे ही ढूंढ रही थी। उसने कहा, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। अब यीशु के चेहरे पर संताप का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था जब वह अपने पकड़वाने वाले से मिलने को गया। चेलों से आगे बढ़कर उसने पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। जब ये सब बोले जा रहे थे उस समय वह स्वर्गदूत जिसे यीशु को संभालने के लिए भेजा गया था वह यीशु और उस भीड़ के बीच में आ गया। मुक्तिदाता का चेहरा एक ईश्वरीय प्रकाश से दमकने लगा और एक कबूतर के समान आकृति ने उस पर छाया कर दिया। इस ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में उन हथियारों की भीड़ एक क्षण के लिए भी वहां ठहर ना सकी थी। वे सब के सब पीछे की ओर सरकने लगे। याजक, पुरने और यहां तक कि यहूदा भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े थे। स्वर्गदूत वहां से हट गया और प्रकाश भी वहां से जाता रहा। यीशु के पास अवसर था कि अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से बच निकले, परंतु वह वहीं पर शांत खड़ा रहा। उन दुष्टों के बीच में एक महिमामयी बनकर वह खड़ा रहा जबकि वे सब उसके कदमों में औंधे पड़े हुए थे। चेलों ने उस दृश्य को चुपचाप और भय तथा आश्चर्य भरी आंखों से देखा, परंतु बहुत शीघ्र ही दृश्य बदल गया था। भीड़ फिर से उठ खड़ी हुई। रोमी सैनिक, याजक और यहूदा सभी ने मसीह को घेर लिया। ऐसा लगा कि वे अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हैं कि शायद वह अब भी बच निकल सकता है। उद्धारकर्ता ने फिर से अपने प्रश्न को दोहराया, तुम किसे ढूंढते हो? उन्हें इस बात का प्रमाण मिल चुका था कि जो उनके सामने खड़ा है वह परमेश्वर का पुत्र है। परंतु वे उसे स्वीकार नहीं किए। उसके उस प्रश्न पर कि तुम किसे ढूंढते हो, उन्होंने उसे फिर कहा, यीशु नाजरी को। तब उद्धारकर्ता ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। चेलों की ओर संकेत करते हुए मसीह ने कहा था कि इन्हें जाने दो। वह जानता था कि उनका विश्वास कितना कमजोर है। वह उन्हें परीक्षा और कठिनाई में पड़ने से बचाना चाह रहा था। उनके लिए वह अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार था। विश्वासघाती यहूदा अपने उस काम को नहीं भूला था जो उसे करना था। जब वह भीड़ बाग में प्रवेश की थी तो उसी ने उनका मार्गदर्शन किया था और उसके पीछे पीछे महायाजक चल रहा था। यीशु को खोजने वालों को उसने एक पहचान बता रखी थी। उसने उनसे कहा था, जिसको मैं चूम लूं वह वही है, उसे पकड़ लेना। मत्ती 26:48। अब वह ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। यीशु के और अधिक पास आकर एक अच्छे मित्र के समान मसीह के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा, जैसे कि उसके दुख से वह भी बहुत दुखी होकर उसके लिए आंसू बहा रहा हो। यीशु ने उससे पूछा, हे मित्र, तू कहाँ से आता है? और बड़े उदास भरे शब्दों में फिर बोला, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? इस प्रकार की विनम्र विनती से विश्वासघाती का विवेक जागृत होकर उसके हृदय को छू लेना चाहिए था, परंतु सम्मान, स्वामी भक्ति और इंसानी सहानुभूति सभी कुछ उसने भुला दिया था। वह बड़े ढीठपने से नीडर खड़ा रहा, जैसे कि उसके स्वभाव में दयामया नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से शैतान के हाथों में सौंप दिया था और अब उससे सामना करने की उसमें कोई शक्ति बाकी ना रही थी। उधर यीशु ने उस विश्वासघाती को चूमने से नहीं रोका। और भीड़ जिसने हाल ही में यीशु की महिमा के दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, यहूदा को उसे छूता हुआ देखकर निडर हो गई थी। अब उन्होंने यीशु को पकड़ लिया और जिन हाथों ने सदा ही भलाई के काम किए थे उन्हें रस्सी से बांधने लगे। चेलों ने सोच रखा था कि उनका गुरु अपने आप को उनके हाथों में नहीं आने देगा। जिस शक्ति के कारण भीड़ उसके सामने मुर्दों की तरह गिर पड़ी थी, वही शक्ति उन्हें तब तक रोके रखेगी जब तक कि यीशु और उसके साथी बचकर निकल नहीं जाते। परंतु उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और क्रोध भी आया जब उन्होंने देखा कि जिसे वे प्यार करते हैं उसके हाथों को बांधने के लिए रस्सी लाई जा रही है। पतरस बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार निकाल लिया ताकि अपने गुरु की रक्षा कर सके, परंतु वह केवल महायाजक के नौकर का दाहिना कान ही काट सका था। जब यीशु ने देखा कि यह क्या हो गया है तो उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया, यद्यपि रोमी सिपाही ने उसे बड़े जोर से पकड़ रखा था, और बोला, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। फिर पतरस से बोला, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? एक एक चेले के बदले एक एक पलटन, ओह, चेलों ने कैसे सोच लिया कि वह अपने आप को और हम सब को बचा नहीं सकता है? बिना कहे उनके विचारों को जानकर मसीह ने उनसे कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? यहूदी अगुओं का सम्मान उनके आड़े नहीं आया जब वे लोग यीशु को पकड़वाने वालों के साथ मिल गए थे। उसको पकड़ने के लिए तो छोटे दर्जे के लोगों का काम था, परंतु धूर्त याजक और पुरनिये मंदिर के सिपाहियों के साथ मिलकर उपद्रवी भीड़ के साथ साथ यहूदा के पीछे पीछे गतसमनी को गए थे। उन सामाजिक सज्जनों को क्या उस भीड़ का साथ देना चाहिए था जो जंगली पशुओं को पकड़ने जैसा हथियार बंद होकर मसीह के पीछे पड़ गए थे? मसीह ने याजकों और पुरनियों की ओर देखते हुए अपनी खोजी नजर को उन पर जमा दिया। जो वचन उसने उस समय उनसे कहे थे, वे लोग उसे अपने जीवन भर नहीं भूल सकते थे। वे वचन सर्वशक्तिमान के हाथ से निकले हुए तीर के समान थे। बड़ी सलीनता के साथ मसीह ने कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। जब चेलों ने देखा कि यीशु ने अपने आप को बांधने और ले जाने की अनुमति दे दी है तो वे लोग अत्यंत ही डर गए। उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि उसने अपने आप को और साथ ही साथ उन्हें भी इस प्रकार से अपमानित होने दिया। उसके इस व्यवहार को वे लोग समझ ना सके थे और उन्होंने सारा दोष उसी पर मढ़ दिया कि उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। क्रोध और भय से घबराकर पतरस ने सलाह दिया कि अब वे लोग अपने स्वयं का बचाव करें। इस सलाह को मानते हुए सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। परंतु मसीह ने तो बहुत पहले ही इस बात को बता दिया था, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। यूहन्ना 16:32। यीशु मसीह को उसके सारे चेले छोड़ के चले गए, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा रहा क्योंकि उसको शास्त्र का बात को पूरा करना था। वह हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इसी में हमारा आशा है। यीशु मसीह अपना जान दे दिया। वह अपने लिए नहीं परंतु हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, दुनिया के सारे लोगों के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए जो कोई उसमें विश्वास करेंगे, उसके जीवन को अपनाएंगे, वे लोग अनंत जीवन पाएंगे, वे लोग बचाए जाएंगे, वे लोग उद्धार पाएंगे। आइए हम उनमें से हों जो यीशु मसीह के जीवन को स्वीकार करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उसके जीवन के पीछे चलें। परमेश्वर हम सबों के साथ रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आप उसके पीछे चलने वाले हो सके। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज फिर से तेरे सम्मुख आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तो सदा से हमारे साथ है और इस समय तेरा वचन हमें दिया है। मेरे हरेक श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको तू अपने वचन से छू दे और तेरे नज़दीक, तेरे पास लेकर आ और हम सबों को ग्रहण कर, हमें तेरे राज के लिए तैयार कर और हमें तेरे स्वर्ग राज में बचा ले। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।